राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 2 मई 1993 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम
प्रकाश में होता है, एक सूर्य का प्रकाश है, उसमें चलना फिरना लेना देना बोलना व्यवहार करना उस प्रकाश में होता है। सब प्रकाश में होता है, परंतु कोई कहे तुम प्रकाश में व्यवहार करते हो, दोनों प्रकार के हमें बढ़ता बढ़ता होता है, व्यवहार करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, देते हैं, आते हैं, जाते हैं, सब व्यवहार करते हैं, प्रकाश में क्या लेना देना है, ऐसा मामूली दिखता है। परंतु विचार कर देखें तो प्रकाश के अंतर की सब व्यवहार प्रकाश के अंतर हो रहा है। प्रकाश है जो का त्यों है, व्यवहार करें तो प्रकाश वैसा ही है और व्यवहार न करें तो प्रकाश वैसा ही है। प्रकाश के अंदर बहुत कुछ आ जाए तो प्रकाश वैसा ही, सब कुछ चला जाए, जैसे पंडाल में आ गए और चले गए, साफ खाली हो गया, तो आने से और जाने से, खाली होने से, भरने से प्रकाश की क्या फर्क पड़ता है, प्रकाश में क्या फर्क पड़ेगा। आने जाने वालों में, क्रिया में, इनमें फर्क दिखेगा, भरा हुआ है, अब आती है कम है, अब ज्यादा है, अब बहुत है, ये तो फर्क पड़ते हैं, परंतु प्रकाश में फर्क पड़ता है क्या। जैसे प्रकाश में फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही आपके जागृत स्वप्न सुषुप्ति में जितने व्यवहार होते हैं, वे व्यवहार सबके सब एक ज्ञान के अंतर्गत होते हैं, एक आपकी जानकारी है उसके अंतर्गत होते हैं। जैसे ये प्रकाश है, ऐसे जानकारी भी एक प्रकाश है। हम इतनी बातें जानते हैं तो जानना एक ज्ञान है, उसके अंतर इतनी बात जानते हैं ना, घना बदन जानते हैं, व्याकरण जानते हैं, हम रमल जानते हैं, हम हिसाब जानते हैं, तो ये तो अलग अलग चीजें हैं, परंतु जानने में क्या फर्क पड़ता है। जागृत हो, स्वप्न हो, सुषुप्ति हो, कोई अवस्था हो, इन अवस्थाओं के संसार के होने न होने में ज्ञान में क्या फर्क पड़ता है। आप नींद लेते हो, सो जाते हो, ख्याल नहीं करते, तो ख्याल नहीं करते तो न करने पर भी ज्ञान तो वैसे ही रहा, और ख्याल किया, अपने चिंतन किया, तो उसमें भी ज्ञान तो वैसे ही रहा। तो ज्ञान अटल है, ये प्रकाश अंधेरा भी उसके अंतर्गत आता है, स्वर्ग मर्त्य पाताल ये लोक त्रिलोक उसके अंतर्गत आते हैं, उत्पत्ति स्थिति प्रलय उस ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। वो ज्ञान उसमें क्या फर्क पड़ता है, उत्पत्ति में, स्थिति में, प्रलय में फर्क है, उत्पत्ति और तरह की है, प्रलय और तरह की है, और साफ प्रदय हो जाए। परंतु जो एक ज्ञप्ति मात्र, जानना मात्र है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। वो है जो का त्यों ज्ञान है, इसी कहते हैं ज्योति श्याम अभिचर ज्योति तमसा परमुच्यते, जो ज्योतियों का भी ज्योति है। जैसे नेत्र एक ज्योति है, त्वचा भी है, पांच ज्ञान इंद्रिया है ना, जो ज्ञान इंद्रिया कहते हैं, ज्ञान इंद्रिय कहते हो प्रकाश इंद्रिय, और शब्द धर्तु प्रकाश इंद्रिय, प्रकाश मां शब्द को प्रकाशित करता है, स्पर्श को प्रकाशित करती है, तो इंद्रिय शब्द स्पर्श रूप को प्रकाशित करते है, चक्षु इंद्रिय तो शब्द स्पर्श रूप रस को प्रकाशित करती है, रस इंद्रिय और गंध को प्रकाशित करते है, ज्ञान इंद्रिय तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये क्या है, ये ज्योतियां है, ये बात समझ आती है ना, शब्द का ज्ञान होता है तो शब्द का प्रकाश किया ना, पर प्रकाश का अंतर्गत शब्द होता है, जैसे ये प्रकाश के अंतर्गत है ऐसे शब्द स्वर रूप रस इनका ज्ञान भी अलग अलग ज्ञान होने पर भी शब्द का ज्ञान ये कान के ज्ञान के अंतर्गत है, इस बात में ज्ञान इंद्रिय कहते हैं, गीता तो कर्मेंद्रिया कहती है, ज्ञान इंद्रिय कहती थी, गीता में ज्ञान इंद्रिय शब्द नहीं आता, ज्ञान शब्द नहीं है, तो ये सब कर्मेंद्रिया है, करना है ऐसे करना, मन शब्द सुना ये भी क्रिया है, शब्द स्वरूप इनकी ये भी क्रिया है, तो क्रिया करने वाले कर्मेंद्रिया है, कर्मेंद्रिया संयम में हयास्ते मन सासमन इंद्रियात्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार यस्तंद्रिया मन से नियम में आरभ थे कर्मेंद्रिय कर्मयोग सब विशिष्य थे, तो कर्मेंद्रिय कर्मेंद्रिय आता है इनका ज्ञान इंद्रिय ना उन्या पूरी गीता में, तो क्यों क्रिया है सभी ये देखना सुनना पढ़ना एक क्रिया है, नैव किंचित करो मिति पश्यन श्रृणन स्पर्शन गच्छन असंगसन असन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलोपन विसन ग्रहणन उन्मिशन निमिशन नभी, तेरा क्रिया बताई, तो तेरी क्रिया है, तो क्रिया होती है वो कर्मेंद्रिय होती है, जो जैसे क्रियाएं होती हुई कर्मेंद्रियां है, यह सभी कर्म है, ये श्रवण मनन सब क्रिया है, निद्रासन क्रिया है, ध्यान एक क्रिया है, समाधि एक क्रिया है, अक्रिय होना क्रिया, क्रिय करना क्रिया, तो ये क्रियाएं सब प्रकाश के अंतर्गत होती है, अब प्रकाश है जो रहता है, क्रियाएं चाहे स्थूल शरीर की हो चाहे सूक्ष्म शरीर की हो चाहे कारण शरीर की हो, ये क्रियाएं है इन शरीरों की, तो शरीर ही एक वस्तु है, इससे होने वाली क्रियाएं है, क्रिया और वस्तु ये प्रकृति का कार्य है, तत्व है प्रकृति से अतीत, सब वेदांत सिद्धांत ही मंत्र, जो स्वयं स्वरूप है वो प्रकृति से अतीत है, क्रियाएं होती हुई प्रकृति का कार्य है, पदार्थ और क्रिया ये प्रकृति का कार्य है, तो क्रियाएं और पदार्थ ये सब प्रकृति का अंतर्गत, अब प्रकृति से अतीत है तत्व, तो उस तत्व के लिए कहते अंतर्गत शुद्ध होने से ज्ञान होगा, अरे अंतर्गत क्या लेना पड़ेगा वहां पर, अशुद्ध होने से क्या बाधा लगेगी, अरे अंतर्गत शुद्ध होने से क्या फायदा हो जाएगा, इस विचार से सोचें, अंतःकरण शुद्धि के बिना ज्ञान नहीं हो रहा है, अंतःकरण शुद्ध हो गया मिल जाएगा, तो अंतःकरण शुद्ध होगा नहीं शुद्ध होगा ये तो है प्रकृति का कार्य, तत्व है प्रकृति से अतीत, अब प्रकृति का कार्य शुद्ध होने से प्रकृति से अतीत का त्याग ज्ञान हो जाएगा, ये मैं आप शंका करूंगी हमारे बैठी नहीं है बात, प्रकृति से अतीत का ज्ञान अंतःकरण शुद्ध होने से होगा, अब कर्म शुद्ध होने से कर्म की क्रिया शुद्ध होगी, क्रिया से अतीत तत्व का ज्ञान कैसे हो जाएगा, आप शंका करो, मैं तो समझने की चेष्टा करता हूं, आप बताओ मैं समझूंगा, मैं निरादर नहीं करूंगा, समाधि अक्रिय क्रिया तो यही है, क्रिया को क्रिया न करे तो क्रिया समाधि क्रिया है, अच्छा क्रिया नहीं है, ध्यान देखो सुनना मेरी बात, जैसे प्रश्न किया है वैसे उसमें थोड़ा प्रकाश प्रकाश भीतर प्रवेश होकर सुनना, प्रकाशी का समाधि का आरंभ काल और प्रकाश अंत काल, अंत प्रकाश खुलती है, समाधि खुलती है कि नहीं, वित्थान होता है कि नहीं। अच्छा, समाधि का आरंभ काल और वित्थान काल उन्हें फर्क है कि नहीं? समाधि अवस्था में, समाधि अवस्था में तो समाधि का आरंभ काल है, एक अवस्था समाधि का वित्थान काल है। तो आरंभ काल और वित्थान काल इसमें क्रिया हुई कि नहीं हुई? क्रिया नहीं हुई तो आरंभ का वित्थान कैसे हुआ? जैसे नींद में क्रिया नहीं है, नींद आ गई और नींद खुली, तो नींद खुली, नींद में कोई क्रिया नहीं है, परंतु बीच में कोई जगा देता है तो कहते काफी नींद में जगा दिया। तो काफी नींद से नींद पकेगी तो क्रिया होगी, बिना क्रिया पक जाएगी? तो समाधि अवस्था आरंभ होती है, समाधि अवस्था अंत होता है, तो क्रिया के बिना आरंभ और अंत कैसे होता है? ये क्रिया तमाशा नहीं है, ये समझने की बात है, गहरी खूब इस बात को गहरे समझना है कि समाधि अवस्था है उसका भी समाधि होती है, व्युत्थान होता है। तो समाधि अवस्था है उसकी समाधि अवस्था आरंभ होता है, समाधि अवस्था की मध्यावस्था होती है, समाधि की अंतावस्था होती है, अंतावस्था में समाधि खुल जाती है तो व्युत्थान हो जाता है, और वो आरंभ होता है। तो आरंभ और व्युत्थान एक समान जाता है क्या? समाधि है जब तक मध्य काल आता है कि नहीं? ये मध्य काल आया, ये आदि काल आया, ये अंत काल आया, ऐसे काल भेद है कि नहीं? अगर काल भेद है तो समाधि में क्रिया नहीं है, कैसे कहा? क्रिया स्थूल क्रिया नहीं है, महाप्रलय होता है उसमें क्रिया नहीं होती, क्रिया होते बिना महा का महाप्रलय हुआ, महासर्ग हुआ, तो महासर्ग होते होते प्रलय हुआ, महाप्रलय हो गया, फिर महाप्रलय का समय समाप्त होने पर फिर महासर्ग हुआ। तो महाप्रलय के बाद महासर्ग हुआ, तो एक तो प्रलय अवस्था होती है, एक सर्ग अवस्था होती है, दोनों अवस्था में प्रलय अवस्था बरूबर ही रहती है क्या? जैसे है सूर्य का प्रकाश होता है, अभी सूर्य का प्रकाश हुआ है, सूर्य उदय होगा, तो सूर्य उदय का प्रकाश है, वो प्रकाश होते 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 मध्यान्ह के समय खास प्रकाश हो जाता है, फिर नीचे जाते हुए प्रकाश कम होते होते सूर्यास्त का कम हो जाता है, मिट जाता है, फिर वो प्रकाश कम होते होते आधी रात तक अंधेरा बढ़ता है, और आधी रात की बात में प्रकाश शुरू होता है, अंधेरा कम होना शुरू होता है, मध्यान्ह सूर्य तक प्रकाश बढ़ता है। तो आधी रात और आधा सूर्य दिन इनमें है परिवर्तन, पर उदय अस्त में परिवर्तन नहीं है, वो तो प्रकाश की क्रिया बढ़ती है घटती है, वो है क्रिया। अपने देखता हूँ सूर्य उदय अस्त, इधर हम ख्याल करते हैं, पर सूक्ष्मता से इंतजार किया जाए तो अंधेरा है मध्यान्ह रात्रि में, प्रकाश है मध्य दिन में, तो वो सूर्य अस्त के मार्ग में है, वास्तव संधि नहीं है, बात ठीक है कि नहीं? ऐसी समाधि उत्थान है, बताओ कोई मार्ग हो बताओ, उधू में अंत में क्रिया होगी, बीच में निष्क्रिया कैसे रहेगी? सूर्य में आरंभ में क्रिया है, वो क्रिया होते 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 मध्यान्ह क्रिया जाएगी, उसके बाद में आरंभ वो व्युत्थान की क्रिया शुरू हो जाएगी, अक्रिया से कौन सी रही? संकल्प से रहित हो गए, पर समाधि में क्रिया नहीं है, कैसे होगा? खूब विचार करो, अच्छे विचार करो, मैं तो समझना चाहता हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं कि खंडन करना चाहता हूँ, ये नहीं, कोई भी काम करो वो आरंभ होता है अंत होता है, आरंभ और अंत होता है उसका मध्यकाल होता है, मध्यकाल होता है तो उसमें आरंभ की जो क्रिया है वो फिर मध्यकाल तक जाती है, और मध्य काल के बाद में उसकी अब समाप्ति काल की तरह जाती है। वो अवस्था समाधि उत्थान काल की तरफ जाती है। तो प्रलय काल की तरफ जाना और उत्थान की तरफ जाना ये क्रिया तो है ही, नहीं तो परिपक्व कैसे है? परिपक्व अवस्था में समाधि भी लग गई, परिपक्व हो गई। अच्छा, ये सब की सब आपके ज्ञान के अंतर्गत है कि नहीं? ज्ञान में कहां आरंभ है, कहां अंत है? ये सब प्रकृति के अंतर्गत है। प्रकृति की प्रकृति भी उस ज्ञान के अंतर्गत छोटी सी है। ज्ञान तो अपार असीम है, ज्ञान है वो स्वरूप है। प्रकृति का ये स्वरूप थोड़ा ही है, समाधि हुआ से वित्थान हो, ये स्वरूप थोड़ा ही है। ये तो परिवर्तनशील है, जागृत अवस्था भी परिवर्तनशील है, स्वप्न अवस्था भी परिवर्तनशील है, सुषुप्ति अवस्था भी परिवर्तनशील है। तो बदलने वाली है ये, बदलने की क्रिया हो तो और क्रिया क्या होती है? क्रिया और क्या, क्रिया का स्वरूप बदलना ही है। तो नहीं बदलता है क्या? सत्य तक सत्ता है, तत्व है, वो नहीं बदलता है। वो तत्व सब जगह प्राप्त है, सब में आप करो न करो, सोवो बैठो जगो कुछ करो, जिसमें वो है उस तत्व में स्थिति सबकी स्वतः सिद्ध है। उसमें स्थिति कोई करनी पड़ती है क्या? केवल लक्ष्य करने का भी ये बात है। जैसे सब व्यवहार करते हुए भी प्रकाश की तरफ दृष्टि न रहने से हम काम करते हैं प्रकाश के अंतर्गत करते हैं ऐसा नहीं मालूम होता, परंतु ख्याल होते ही मालूम होता है कि प्रकाश के अंतर्गत क्रिया हो रही है। जब तब ख्याल नहीं करे तब तो क्रिया तो होती है, पर प्रकाश के अंतर्गत होती है, थोड़ी दिखती है। ऐसे ख्याल करने से दिखता है कि सब क्रियाएं प्रकाश के अंतर्गत होती है। ऐसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति उत्पत्ति स्थिति प्रलय आना जाना महासर्ग महाप्रलय युग युगांतर ब्रह्मा की आयु ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं महास्थित होते हैं महाप्रलय में लीन हो जाते हैं तो ऐसे ब्रह्मा फिर दूसरे प्रकट होते हैं। यह तो सब सब क्रिया काल के अंतर्गत हुई ना, यह तत्व काल के अंतर्गत है क्या? तो इनके कोई महत्व है क्या? वेदर है क्या महत्व है? महत्व तो तत्व का है जिसमें ये सब प्रकाशित होते हैं। ये प्रकाशित होने रहे न रहे, प्रलय हो जाए सर्ग हो जाए, तत्व में क्या फर्क पड़ता है? जिसमें नहीं फर्क पड़ता है उसी की प्राप्ति है, और उसी की प्राप्ति में ये सब होती है सभी, उसके बिना हो ही नहीं सकती। ज्योतिषाम ज्योतिष तमसा परमुच्यते, ज्योतियों का ज्योति है सबसे प्रथम जो भाषता अव्य सनातन दिव्य दीपक सर्व विश्व प्रकाशता। ज्योतियों का सब ज्योतियों का ज्योति है। ये ज्योति कोई बाहर की है कोई भीतर की है, मन में आप से वो मन रूपी ज्योति मनन होता है, बुद्धि रूपी ज्योति में निश्चय होता है। तो मन बुद्धि ये भी एक ज्योति है, इंद्रियां ये भी ज्योति है, ऐसे कर्म इंद्रियों में एक ज्योति अपने काम करने में, अपने अपने देश में सब अपने है मालिक है, सब घर घर अपने घर घर के मालिक है, ऐसे अपने अपने इंद्रियां है। परंतु संपूर्ण का सर्व का सब कर परम प्रकाश जो ही विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति जोई। उसका प्रकाशक कोई नहीं, सबको प्रकाश करने वाली है इंद्रिया, ये प्रकाश है प्रकाशों को, इन प्रकाशों को वास्तव में प्रकाशक है वो तत्व है, वो प्राप्त करना है। इसमें जितनी शंका हो, जैसे आपका भी समाधि में क्या क्रिया है ऐसी शंका करो, बड़ा बल मिलेगा। इसमें आप शंका करो, विषय खुलेगा, विशुद्ध होगा, स्वच्छ निर्मल होगा। तो प्राप्त है, परंतु आदर इस प्रकाश का है कि प्रकाश में आने वाली चीजों का आदर है हमारे। अभी व्यवहार करते हैं उसमें आदर प्रकाश का करते हैं कि वस्तुओं का करते हैं? हम महत्व प्रकाश को देते हैं कि लेने देने खाने पीने को करते हैं? यह प्रकाश तो है ही, मैंने वह काम क्या है हमारे, उधर दृष्टि नहीं है, काम क्या है बताओ? ये तुम्हें आज कहा है प्रकाश में होता है, आपको पहले पता था कि सब प्रकाश में काम करते हैं? ख्याल था? अरे ख्याल होने होने पर प्रकाश क्रिया के प्रकाश में होती थी, ख्याल करे चाहे न करे, जाने चाहे न जाने, माने चाहे न माने, स्वीकार करें चाहे न करें, हमें उनका फर्क क्या पड़ता है? प्रकाश तो वैसे ही देता है, ऐसे ख्याल करें तो उस तत्व का बोध होता है। ठीक है, बोध में से तो हो जाओ, बोध बोध में से तीसरे सोते हैं, बोध में से जो है ठीक है। अब क्रिया हो न हो, छोटी हो बड़ी हो, क्षय हो प्रलय हो, उत्पत्ति हो स्थिति हो कुछ हो, तो वो जो तत्व है स्वतः उसको प्राप्त करना मनुष्य का धर्म है। हमारे धर्म की वास्तव उस तत्व को प्राप्त होने में सफलता है। यार उस तत्व को नहीं प्राप्त किया तो क्या किया? सब काम करते हैं पर प्रकाश की तरफ ख्याल ही नहीं है, बिना प्रकाश के क्रिया होती ही नहीं कोई भी। प्रकाश के अंतरिक्ष होता है पर होते हुए प्रकाश की तरफ ख्याल कितना का है? क्रिया तो होती रहेगी, क्रिया तो प्रकाश में होती रही, बोध में होती रहती, अभी बोध भी हो रही है, बोध काल में बोध में होती है, बोध का बोध काल नहीं है अज्ञान काल, तो अज्ञान काल में बोध में क्रिया तो वही हो रही है, प्रकाश में ही हो रही है, बोध हो चाहे न हो,
बोध निश्चित हो जाए,
बोध में स्थिति हरदम रहती है, बोध व्युत्थान होता ही नहीं,
जानकारी नहीं है ना अभी,
व्युत्थान तो अवस्था में होता है, अवस्था होती है उसका आरंभ और अंत होता है, बोध का आरंभ और अंत थोड़े होता है। तो सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवतपति सोई, नारायण 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 नारायण।